एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत। मैं हूँ मेजबान एक।
और मैं हूँ मेजबान दो। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एडम ग्रांट की गिव एंड टेक, जिसका मोटा मोटा मतलब हुआ देना और लेना।
हाँ, और ये किताब ना एक बड़े पुराने सवाल को बिल्कुल नए ढंग से देखती है। सवाल ये कि क्या वाकई अच्छे मददगार लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। हम सब सफलता तो चाहते हैं, पर अक्सर लगता है कि दुनिया थोड़ी मतलबी सी है और शायद आगे बढ़ने के लिए थोड़ा वो स्वार्थी होना ही पड़ता है।
बिल्कुल, ये ख्याल तो आता है, लेकिन ये किताब कहती है नहीं, रुकिए, शायद ऐसा है नहीं। ग्रांट का जो शोध है वो कुछ मतलब हैरान करने वाली बातें सामने लाता है।
जैसे?
जैसे कि जो लोग सबसे ज्यादा देते हैं वो असल में सफलता की सीढ़ी पर सबसे नीचे भी पाए जाते हैं और सबसे ऊपर भी।
अरे, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात है।
है ना, यही तो सबसे दिलचस्प पहेली है इस किताब की। और ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि देना अच्छा है या नैतिक है,
हाँ,
बल्कि ये समझाती है कि हमारे काम करने का तरीका, दूसरों के साथ हमारे रिश्ते निभाने की शैली, मतलब हमारी भूमिका क्या है, हमारे लक्ष्य क्या हैं, ये सब हमारी सफलता पर कितना गहरा असर डालते हैं।
अच्छा, तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
हाँ बिल्कुल, शुरुआत करते हैं लेखक से, एडम ग्रांट। ये कोई आम प्रोफेसर नहीं है, पता है?
हाँ, मैंने भी पढ़ा इनके बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वोटन स्कूल में सबसे कम उम्र में कार्यकाल मिला इन्हें और कई सालों तक टॉप रेटेड प्रोफेसर भी रहे।
एग्जैक्टली, और वो एक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब वो इस चीज का अध्ययन करते हैं कि दफ्तरों में, संगठनों में लोग एक दूसरे से कैसे बर्ताव करते हैं।
और उनकी खास बात शायद ये है कि वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते हैं, है ना?
बिल्कुल नहीं, उन्होंने हजारों लोगों पर रिसर्च की है और गूगल, नासा, यहां तक कि अमेरिकी सेना जैसी जगहों के साथ भी काम किया है। वो अकादमिक शोध को असल जिंदगी की कहानियों से जोड़कर पेश करते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल।
सही कहा, उनकी खूबी यही है कि वो मनोविज्ञान के जो मुश्किल सिद्धांत होते हैं ना, उनको कहानियों और डेटा के जरिए इतना आसान बना देते हैं कि कोई भी समझ ले और अपनी जिंदगी में लागू करने की सोच सके।
तो इसीलिए देने और लेने जैसे पेचीदा विषय पर बात करने के लिए वो एकदम सही व्यक्ति लगते हैं।
निश्चित रूप से।
तो किताब का निचोड़ क्या है, मतलब मुख्य बात क्या है?
ग्रांट कहते हैं कि हम सब जब दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो मोटे तौर पर तीन में से एक भूमिका या शैली अपनाते हैं। उन्होंने इन्हें नाम दिया है देने वाले यानी गिवर्स,
लेने वाले टेकर्स,
और बराबरी वाले मैचर्स।
अच्छा, तो इनको थोड़ा और समझाएंगे, ये देने वाले, लेने वाले, बराबरी वाले आखिर हैं कौन?
हाँ बिल्कुल, देखिए, देखने वाले गिवर्स, इनका फोकस होता है दूसरों की मदद करना, योगदान देना। इनका लक्ष्य होता है कि ये जितना पाएं उससे ज्यादा दें, और वो भी बिना तुरंत कुछ वापस मिलने की उम्मीद किए।
अच्छा,
लेने वाले टेकर्स, इनका फोकस खुद पर होता है, खुद को आगे बढ़ाने पर। इनका लक्ष्य साफ है, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना। कोशिश यही रहती है कि जितना दें उससे कहीं ज्यादा लें।
ठीक है, और तीसरे
बराबरी वाले मैचर्स, ये बीच वाले हैं। इनकी भूमिका संतुलन साधने की है। इनका लक्ष्य होता है निष्पक्षता, मतलब हिसाब बराबर, जैसा दोगे वैसा पाओगे। तुम मेरी मदद करो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा।
और ग्रांट कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी बराबरी वाली श्रेणी में आते हैं, ना?
हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग मैचर ही होते हैं, लेन देन का हिसाब रखते हैं।
और किताब का जो केंद्रीय तर्क है वो ये है कि आपकी शैली कौन सी है, ये आपकी सफलता या असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है।
हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसा हमने शुरू में कहा था, देने वाले सबसे सफल भी होते हैं और सबसे असफल भी।
यही तो सवाल ये उठता है कि जो सफल देने वाले हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं, उनकी भूमिका या उनके लक्ष्य असफल देने वालों से कैसे अलग होते हैं?
बस यहीं से किताब की असली गहराई शुरू होती है। ग्रांट सिर्फ ये नहीं कह रहे कि अच्छे बनो, वो असल में एक सफल होने की रणनीति बता रहे हैं।
अच्छा,
वो नेटवर्किंग, टीम वर्क, प्रभाव डालने, प्रतिभा पहचानने जैसे कई अलग अलग क्षेत्रों में इन शैलियों का असर दिखाते हैं। मुद्दा ये समझना है कि कब देना है, कैसे देना है और किसे देना है, ताकि आप दुनिया में अच्छा काम भी कर सकें और खुद का फायदा उठाया जाने से भी बच सकें।
ठीक है, तो चलिए कुछ मुख्य विचारों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहला बड़ा मुद्दा आपने कहा नेटवर्किंग और सहयोग का। हम सब जानते हैं कि अच्छे कनेक्शंस कितने जरूरी होते हैं।
बिल्कुल,
तो ये तीनों शैलियां नेटवर्क कैसे बनाती हैं, इसमें क्या फर्क है?
बहुत फर्क है। लेने वाले का लक्ष्य तो साफ होता है, मतलब कि रिश्ते बनाना। वो उन लोगों से जुड़ते हैं जो उनके काम आ सके।
हाँ, अक्सर अपने से ऊपर वालों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं ना, और नीचे वालों को शायद नजरअंदाज कर देते हैं।
बिल्कुल सही। उनका नेटवर्क शायद दूर से बड़ा दिखे, पर अक्सर वो खोखला सा होता है, क्योंकि वो रिश्ते निभाने में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगाते। उनकी भूमिका एक तरह से सीढ़ी चढ़ने वाले की होती है।
जबकि देने वाले, उनका नजरिया क्या होता है?
उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। उनका लक्ष्य होता है मदद करना, तो वो स्वाभाविक रूप से रिश्ते बनाते हैं। वो सोचते हैं, अच्छा मैं इस व्यक्ति की मदद कैसे कर सकता हूँ। ग्रांट एक उदाहरण देते हैं एडम रिफ्किन का, जिन्हें फॉर्च्यून मैगजीन ने एक बार सबसे बेहतरीन नेटवर्कर कहा था। उनका एक सिद्धांत है 5 मिनट का फेवर।
हाँ हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। मतलब कोई ऐसी छोटी सी मदद कर देना जिसमें 5 मिनट से ज्यादा ना लगे।
एग्जैक्टली। जैसे किसी को सही व्यक्ति से मिलवा देना, कोई जानकारी साझा कर देना, छोटी छोटी चीजें।
और ये छोटी छोटी मददें शायद समय के साथ विश्वास और सद्भावना का एक बड़ा खजाना बना देती हैं।
बिल्कुल। देने वालों का नेटवर्क शायद धीरे धीरे बनता है, लेकिन वो ज्यादा मजबूत और वफादार होता है। और यही बात टीम वर्क में भी दिखती है।
कैसे?
लेने वाले अक्सर टीम में भी क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, है ना? जबकि देने वाले टीम की सफलता को प्राथमिकता देते हैं। उनकी भूमिका टीम को जिताने वाले की होती है, सिर्फ खुद को नहीं।
इसका एक जबरदस्त उदाहरण ग्रांट द सिम्पसन शो के लेखक जॉर्ज मेयर का देते हैं। सुनाया आपने?
हाँ हाँ, वो अपने सबसे अच्छे चुटकुले या आइडियाज भी दूसरों को दे देते थे।
कमाल है, सिर्फ इसलिए ताकि शो बेहतर बन सके। अब सोचिए कितना अलग है उस माहौल से जहां हर कोई अपने आइडियाज छुपाकर रखता है।
बिल्कुल। देने वाले एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सब मिलकर आगे बढ़ सके, चमक सके।
सही कहा। लेकिन यहीं पर शायद देने वालों के लिए खतरा भी आता है, खासकर प्रतिभा पहचानने में।
हाँ बिल्कुल। देने वाले अक्सर उन लोगों में भी संभावना देख लेते हैं जिन्हें दूसरे शायद नजरअंदाज कर देते हैं। वो एक तरह से हीरे को तराशने में विश्वास रखते हैं। लेकिन कई बार लोग उनके इस भरोसे का गलत फायदा उठा लेते हैं।
हाँ, और यहीं पर शायद वो असफल देने वाले बन सकते हैं, जो बस देते जाते हैं और बदले में धोखा खाते हैं।
सही। लेकिन सफल देने वाले सीखते हैं कि कैसे परखें। अच्छा, अब आते हैं प्रभाव डालने यानी इन्फ्लुएंस पर। हमें अक्सर क्या लगता है कि अपनी बात मनवाने के लिए जोरदार होना पड़ता है ना, आत्मविश्वास दिखाना पड़ता है।
हाँ, लेने वाले अक्सर यही करते होंगे शायद, अपनी बात पर अड़े रहना, डोमिनेट करना।
बिल्कुल। पर ग्रांट एक और दिलचस्प तरीका बताते हैं, शक्तिहीन संचार, पावरलेस कम्युनिकेशन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ, शक्तिहीन होकर कोई कैसे प्रभाव डाल सकता है,
है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर दिखें। इसका मतलब है सवाल पूछना, सलाह मांगना, कभी कभी अपनी कमजोरी या अनिश्चितता जाहिर करना।
अच्छा, इससे क्या होता है?
ग्रांट दिखाते हैं कि जब आप किसी से सलाह मांगते हैं तो सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस होता है, वो आपके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है।
हाँ, बात तो सही है।
ये तरीका ज्यादा भरोसा पैदा कर सकता है और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, खासकर जब आप किसी बराबरी वाले, मैचर या देने वाले गिवर से बात कर रहे हों। लेने वालों पर शायद इसका असर कम हो।
ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हमेशा दबंग अंदाज ही काम नहीं आता, विनम्रता भी एक ताकत हो सकती है।
बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी सवाल शायद ये है कि देने वाले लगातार देते कैसे रहें, बिना थके, बिना शोषण का शिकार हुए। इसे ग्रांट कहते हैं देने वालों का टिकाओ या मोटिवेशन मेंटेनेंस।
हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग देते देते थक जाते हैं।
एग्जैक्टली। और यहीं पे ग्रांट एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं दो तरह के देने वालों के बीच, स्वार्थ रहित और परार्थी।
स्वार्थ रहित और परार्थी, ये क्या है?
ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, असफल देने वाले अक्सर स्वार्थ रहित होते हैं। उनकी भूमिका सिर्फ दूसरों की सेवा करना बन जाती है। वो अपने हितों को, अपनी ऊर्जा को, अपने लक्ष्यों को पूरी तरह भूल जाते हैं।
तो नतीजा?
नतीजा बर्नआउट, थकान, कड़वाहट। वो महसूस करते हैं कि दुनिया ने उनका फायदा उठाया।
ये तो होता है।
लेकिन सफल देने वाले परार्थी होते हैं। हाँ, वो दूसरों की मदद करते हैं, उनका लक्ष्य दूसरों का भला करना होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन
लेकिन
लेकिन वो अपने हितों और लक्ष्यों को भी नजरअंदाज नहीं करते। उनकी भूमिका संतुलित होती है। वो जानते हैं कि अपनी देखभाल करना भी जरूरी है ताकि वो लंबे समय तक दे सकें।
अच्छा, तो वो कैसे करते हैं ये?
वो मदद करने के वो तरीके चुनते हैं जिनमें उन्हें खुद भी मजा आता है, जो उनके कौशल से मेल खाते हैं और जहां उनका प्रभाव ज्यादा हो सकता है। वो हर किसी के लिए सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते।
और वो शोषण से बचना भी सीखते होंगे।
बिल्कुल, ग्रांट कहते हैं कि लेने वालों को पहचानना जरूरी है। इसके कुछ संकेत भी बताते हैं।
जैसे कैसे पहचाने?
जैसे वो अक्सर मैं मेरा बहुत बोलते हैं, दूसरों के काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं और लोगों से उनके पद या उनकी उपयोगिता के हिसाब से अलग अलग व्यवहार करते हैं।
हाँ, ये देखा है मैंने।
तो सफल देने वाले सीखते हैं कि लेने वालों के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा बराबरी वाला मैचर की तरह सोचें, अपनी सीमाएं तय करें,
ना कहना सीखें।
हाँ, ना कहना सीखें। अगर कोई लगातार सिर्फ ले रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बनाना या अपने देने के तरीके को बदलना जरूरी है। समाज में जो बराबरी वाले होते हैं ना, वो एक तरह से संतुलन बनाते हैं, वो लेने वालों को सबक सिखाते हैं।
तो कुल मिलाकर किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि देते रहो, बल्कि ये सिखाती है कि स्मार्ट तरीके से कैसे देना है।
बिल्कुल सही, ये उदारता और व्यावहारिकता का एक संगम है।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से बड़े संदेश क्या निकलते हैं, अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो?
मेरे ख्याल से पहला तो यही देने वालों का विरोधाभास है कि सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप देते हैं या नहीं, बल्कि इस पर कि आप कैसे देते हैं। आपकी भूमिका क्या है? क्या आप डोरमैट बन रहे हैं या एक समझदार मददगार?
हाँ, और क्या आपका लक्ष्य सिर्फ दूसरों का भला है या उसमें आपकी अपनी भलाई भी शामिल है? ये परार्थी वाला आइडिया।
एग्जैक्टली, सोचिए अपने आसपास, ऑफिस में, दोस्तों में, परिवार में, आपको दोनों तरह के देने वाले दिखेंगे।
हाँ बिल्कुल, कुछ जो हमेशा सबके लिए दौड़ते भागते रहते हैं पर खुद शायद उतने सफल नहीं हो पाते, और कुछ जो सबकी मदद भी करते हैं और अपने करियर या जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, वो शायद परार्थी हैं।
दूसरा बड़ा थीम ये है कि ये शैलियाँ, गिवर, टेकर, मैचर, हमारे व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में मदद करती हैं। अगर हम समझ जाएं कि सामने वाले की मुख्य शैली क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, तो हम उसके साथ बेहतर ढंग से बातचीत कर सकते हैं,
सहयोग कर सकते हैं, या जरूरत पड़े तो खुद को बचा भी सकते हैं। टीम प्रोजेक्ट्स में ये बहुत साफ दिखता है ना? कौन सिर्फ अपना सोच रहा है, कौन हिसाब बराबर रख रहा है और कौन सबकी नाव पार लगाने में लगा है।
बिल्कुल। तीसरा, देना एक तरह का दीर्घकालिक निवेश है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में लेने वाले आगे निकल जाएं क्योंकि वो मौके का फायदा उठाना जानते हैं।
हाँ, वो जल्दी आगे बढ़ते दिखते हैं।
लेकिन लंबे समय में देने से जो विश्वास बनता है, सद्भावना बनती है, मजबूत रिश्ते बनते हैं, उनका फायदा कहीं ज्यादा होता है। आपकी एक प्रतिष्ठा बनती है, लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। ये वो चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता।
ये बात तो बहुत गहरी है। और चौथा संदेश?
चौथा जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्थायी उदारता के लिए सीमाओं का महत्व। अगर आप हमेशा हाँ कहते रहेंगे, अपनी क्षमता से ज्यादा करेंगे, तो आप थक जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे और फिर शायद देना ही बंद कर दें। परार्थी बनना मतलब अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना। अपनी देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, ये लंबे समय तक उदार बने रहने के लिए जरूरी है।
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार वाकई बहुत यादगार है। जैसे एक मुख्य विचार है, सफल होने का सबसे सार्थक तरीका है दूसरों को सफल होने में मदद करना।
ये उस सोच को चुनौती देता है कि सफलता एक सीमित चीज है, कि किसी की जीत के लिए किसी का हारना जरूरी है। ये कहता है कि नहीं, सबकी सफलता आपस में जुड़ी हुई है।
खासकर आज की दुनिया में जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं, जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो आप खुद भी ऊपर उठते हैं। ये सफलता का एक ज्यादा सकारात्मक और टिकाऊ नजरिया है।
बिल्कुल। एक और विचार जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, सबसे प्रभावी देने वाले परार्थी होते हैं। वे दूसरों को लाभ पहुंचाने की परवाह करते हैं, लेकिन अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखते हैं।
हाँ, ये संतुलन वाली बात, ये सफल देने वाले की भूमिका और लक्ष्य को एकदम साफ कर देता है। मदद करो पर अपने सपनों को मत भूलो।
और वो 5 मिनट का फेवर वाली बात, दूसरों की मदद करने के इन छोटे अवसरों को खोजना, ये दिखाता है कि देने वाला बनने के लिए कोई मसीहा बनने की जरूरत नहीं है।
हाँ, रोजमर्रा की छोटी छोटी मददें भी बहुत मायने रखती हैं और इन्हें अपनी आदत बनाना शायद ज्यादा आसान भी है, बोझ नहीं लगता।
सही कहा।
तो अब सवाल ये है कि हम इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ, कई तरीके हैं। जैसे नेटवर्किंग में सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचें मैं कैसे मदद कर सकता हूँ।
ऑफर करें, परिचय कराएं, जानकारी साझा करें।
बिल्कुल। लीडरशिप में अपनी टीम को आगे बढ़ने में मदद करें, उनकी सफलता का श्रेय उन्हें दें। एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ लोग मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं।
सेल्स या ग्राहक सेवा में भी ये काम आ सकता है।
हाँ बिल्कुल। ईमानदारी से ग्राहक की जरूरत पर ध्यान दें, भले ही उसमें तुरंत आपका बड़ा फायदा ना दिख रहा हो। इससे लंबे समय का विश्वास बनता है जो बहुत कीमती है।
और निजी रिश्तों में?
निजी रिश्तों में भी बिना हिसाब किताब रखे मदद करें, लेकिन साथ ही अपनी ऊर्जा और सीमाओं का ध्यान रखें, अपनी जरूरतों को भी बताना सीखें।
हाँ, ये जरूरी है। और वो मोलभाव वाली बात, अगर कोई देने वाला है और अपने लिए बात करने में झिझकता है।
हाँ, ग्रैंट एक दिलचस्प टिप देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने लिए मोलभाव करने में असहज महसूस करते हैं, तो सोचें कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, जैसे अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए। इससे देने वाले अक्सर ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं।
अरे वाह, ये तो अच्छी तरकीब है।
संक्षेप में, हम सब थोड़ा और परार्थी बनने की दिशा में बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं है, ये समझदारी से सफलता पाने का एक तरीका भी हो सकता है।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि उदारता अगर समझदारी और सीमाओं के साथ हो, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। परार्थी बनना यानी अपने लक्ष्यों के साथ दूसरों की मदद को जोड़ना सफलता का एक टिकाऊ और शायद ज्यादा संतोषजनक रास्ता है।
और मुझे वो शक्तिहीन संचार वाली बात ने सचमुच सोचने पर मजबूर किया। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रभाव डालने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है या रौब दिखाना पड़ता है।
हाँ,
लेकिन विनम्रता, सवाल पूछना, सलाह मांगना, ये भी शक्तिशाली तरीके हो सकते हैं, खासकर अगर आपका लक्ष्य भरोसा बनाना और मिलकर काम करना है। ये हमारी पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग है, पर बहुत असरदार हो सकता है।
तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, अपने आसपास देखिए, काम पर, दोस्तों में, परिवार में, क्या आप देने वाले, लेने वाले और बराबरी वाले लोगों को उनके भूमिकाओं और लक्ष्यों के साथ पहचान पाते हैं? और सबसे ज़रूरी, आप खुद को किस भूमिका में ज़्यादा देखते हैं? क्या आप थोड़ा और परार्थी बनने की दिशा में कुछ कदम बढ़ा सकते हैं, ये जानते हुए कि इसके फ़ायदे हो सकते हैं?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।